वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस बहुत ही पावन अवसर पर। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में श्रीमती राधा रानी का महत्व इतना है जैसे कि मछली के जीवन में पानी का महत्व। यदि कोई मछली को जाकर पूछे कि आपके जीवन में पानी का महत्व कितना है, तो मछली क्या उत्तर देगी? मछली कहेगी, सबसे पहले तो ये कोई प्रश्न है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त यदि करनी है, यदि भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हमें कुछ भी हासिल करना है, तो श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने पूरा अधिकार, पूर्ण रूपेण, या ये कहेंगे पूरा कॉपीराइट अपने स्वयं का, क्योंकि एक तरीके से आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, राधा और कृष्ण इनमें कोई अंतर नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया है कि हम जैसे पांच तत्वों के बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, खम, वैसे यदि पूछा जाए कि श्रीमती राधा रानी ये किन तत्वों की बनी है, श्रीमती राधिकेर प्रकार श्री कृष्ण प्रेमेर विकार, श्रीमती राधा रानी उस तत्व से बनी हुई है जो कि श्री कृष्ण का अंतःकरण का प्रेम, उस तत्व से श्रीमती राधा रानी बनी। अब सोचिए, हम जब पांच तत्वों के संपर्क में आते हैं तो अपने आप को जिलाने के लिए हमें इन पांच तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और यदि श्रीमती राधा रानी जो केवल इस एक तत्व से बनी हुई है, कृष्ण प्रेम, तो श्रीमती राधा रानी का जीवन, हर एक सांस केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। इसलिए आज सुबह इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो नाम है राधा, ये कोई नाम नहीं है, या अंग्रेजी में कहेंगे कोई नाउन नहीं है, ये एक वर्ब है, क्रियापद, क्योंकि ये नाम श्री राधा उन्हें मिला है उनकी आराधना से, आराधितो। नारद मुनि एक सुंदर श्लोक में कहे हैं, श्रीमती राधा रानी के भी संपर्क में इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, न अंतर बहिर यदि तपसा तथा किम। वो कहते हैं कि यदि आराधना भगवान श्री हरि की जैसे राधा रानी करती हैं, यदि वैसे कोई कर रहा है, श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों पर चलकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना यदि कोई कर रहा है, तपस्या तथा किम, और तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्या जरूरत है तपस्या करने की, क्योंकि सारी तपस्याओं का मूल उद्देश्य है श्रीमती राधा रानी की तरह भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना। तो कहते हैं आराधितो यदि हरि तपसा तथा कि वैसी आराधना करने से तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। फिर वो कहते हैं न आराधितो यदि हरि, और यदि कोई उस प्रकार की आराधना में नहीं लगा है, तब फिर चाहे वो कितनी भी तपस्या करे, क्या फायदा उस तपस्या का। न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, फिर उस तपस्या का क्या फायदा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज उन्होंने कहा कि यदि कोई हमसे पूछे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कौन है भगवान श्री कृष्ण। हम केवल इतना जानते हैं कि हम इन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना जो कुछ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इनका कुछ संबंध है राधा रानी से, ये कनेक्टेड है राधा रानी से और इसलिए हमारी सारी पूजा के योग्य। हालांकि हम उस स्तर पर नहीं हैं कि हम इस, हम केवल दोहरा रहे हैं जो उनकी भावना है श्रीमती राधा रानी के प्रति। हालांकि श्रीमती राधा रानी के विषय में हम नगण्य जीव अपने इस तुच्छ मुख से क्या बोल सकते हैं, जबकि सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन कथाकार, सुखदेव गोस्वामी उन्होंने श्रीमती राधा रानी का नाम पूर्ण रूपेण नहीं ले पाए श्रीमद् भागवत में। और इसके पीछे कारण क्या था? सुखदेव गोस्वामी जब रास लीला का वर्णन कर रहे थे दशम स्कंद में, तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का नाम उनके मुख पर आते आते रुक गया और बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत कठोर प्रयास करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को रोका कि राधा रानी का नाम वो न निकाल सके। अब आप लोग पूछेंगे, भाई क्यों? श्रीमती राधा रानी का नाम तो इतना पुण्य, इतना शुद्ध, क्यों वो नहीं निकालना चाहते थे? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उन्होंने सोचा कि यदि मेरे मुख से श्रीमती राधा रानी का नाम आ जाएगा तो श्रीमती राधा रानी के ध्यान में मैं आगे की कथा नहीं सुना पाऊंगा, इतना भाव विभोर मैं हो जाऊंगा श्रीमती राधा रानी के ध्यान में उनके गुणों को सोचते हुए कि परीक्षित महाराज आगे की कथा मुझसे नहीं सुन पाएंगे। इसलिए श्रीमती राधा रानी के विषय में बहुत ही बड़े बड़े जो प्रगत भक्त हैं उन्होंने बहुत संकुचित तरीके से बताया, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का पद इतना ऊंचा है कि जब ब्रह्मा जी भी विष्णु के पास जाते हैं श्वेत द्वीप ये याचना करने के लिए कि आप अवतरित होइए, राक्षसों का प्रकोप बढ़ रहा है इस पृथ्वी पर, पृथ्वी का भार बढ़ रहा है, तो स्वयं भगवान श्री विष्णु श्रीमती राधा रानी से अनुमति लेते हैं। आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं उनका आविर्भाव दिवस मनाने के लिए। एक सुंदर कथा है, केवल राधाष्टमी के इस महोत्सव में आने का फल क्या है इसके संदर्भ में पद्म पुराण में यह कथा आती है कि एक वैश्या हुई थी जिसका नाम था लीलावती, और वैश्या होने के कारण अपने वैश्यावृत्ति कार्यों में ये दिन रात लगे रहती। तो एक दिन ये अपने वैश्यावृत्ति के कार्य के लिए निकल रही, सड़क से चल रही थी और इसने देखा कि एक मंदिर में बहुत धूमधाम से कुछ महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये थोड़ा रुक गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहां पर, और फिर सभी को इतना भाव विभोर देखकर लीलावती वो उत्सुक हुई। उसने सोचा कि कुछ समय में ये इतना आनंद जो ये लोग अपने आप में महसूस कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा इसे अनुभव करूं। तो उस मंदिर में उसने प्रवेश किया और पूछा कि क्या हो रहा है आज। तो इस वैश्या को बताया गया कि आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, आज राधाष्टमी है। तो इस लीलावती वैश्या को कुछ पता नहीं था कौन है राधा रानी या राधाष्टमी का महत्व क्या है। तो इसने पूछा कि किसी का आविर्भाव दिवस बता रहे हो तुम लोग, तो किसी के जन्मदिन पर कुछ भेंट देनी चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से क्या भेंट दे सकती हूं। तो वहां पर एक राधा रानी की भक्त, वो जानती थी कि ये लीलावती वैश्या है, तो ये चाहती थी कि आज के दिन, मैं तो रोज ही राधा रानी की कृपा प्राप्त करती हूं, परंतु ये अपने जीवन में पहली बार श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस पर प्रकट हुई है। तो ये दूसरी महिला ये कुछ चंदन लाई थी श्रीमती राधा रानी को अर्पित करने के लिए। तो इसने लीलावती इस वैश्या को चंदन दिया और कहा कि यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये चंदन अर्पित कर दो आज श्रीमती राधा रानी को। तो कोई ये नहीं कि प्रेम भावना से, केवल कहा गया इसलिए अर्पित कर दिया श्रीमती राधा रानी को वो चंदन। और फिर वो अपने वैश्यावृत्ति कार्यों में निकल पड़ी। बहुत वर्ष बीते, उसे सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हुई, और जैसे ही मृत्यु हुई यमदूत यमपाश लेकर लीलावती को यमलोक ले जा रहे थे। और वो लीलावती की आत्मा को जब यमलोक ले जा रहे थे तो रास्ते में, यमलोक का रास्ता बहुत भयावह होता है, रास्ते में लीलावती रोती बिलखती क्षमा मांगती हुई इन यमदूतों से याचना कर रही है, और उसी समय इन यमदूतों के सामने, लीलावती के सामने एक स्वर्णिम विमान, वैकुंठ विमान। परंतु वो वैकुंठ विमान नहीं था, वो श्री गोलोक वृंदावन धाम से आया था। और ये विमान साधारण किसी शुद्ध भक्त को ले जाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता था, यह निजी विमान था श्रीमती राधा रानी का, जो श्रीमती राधा रानी ने इस वैश्या के लिए भेजा, जिसने अपने जीवन में केवल एक बार राधाष्टमी के महोत्सव में भाग लिया और कुछ चंदन, वो भी वो स्वयं नहीं लाई थी, कुछ चंदन अर्पित किया। और श्रीमती राधा रानी ने अपना निजी विमान भेजा गोलोक वृंदावन में इस लीलावती को नित्य स्थान देने के लिए। बोलो श्रीमती राधा रानी की। तो यदि आज हमने राधाष्टमी के इस महोत्सव पर कुछ भी, यदि और कुछ नहीं तो केवल अपनी प्रार्थनाएं यदि अर्पित की हैं, तो निस्फिकर रहिए, श्रीमती राधा रानी बिल्कुल नहीं भूलती। और जब कभी हमारा अंतिम समय आएगा तो श्रीमती राधा रानी का वो स्वर्णिम विमान हमारी प्रतीक्षा में रहेगा। तो ये महत्व केवल राधाष्टमी के महोत्सव में भाग लेने का बताया गया। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव आज के दिन हुआ वृषभानु और कीर्तिदा। वृषभानु इनके पिता का नाम, कीर्तिदा इनकी माता का नाम। इनके माता पिता के विषय में बताया गया है कि इनके पिछले जन्म में इनका नाम था सुचंद्र और कलावती, और इन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और केवल एक ही इच्छा इनकी कि श्रीमती राधा रानी इनकी पुत्री के रूप में पैदा हो। और 10,000 वर्षों तक सुचंद्र और कलावती इन्होंने केवल सूखे पत्ते खाए। देखिए, हम खा पीकर यहां बैठे हैं आज, हमें से किसी ने 10,000 वर्षों तक सूखे पत्ते खाए आज के इस महोत्सव में भाग लेने के लिए राधा रानी के आविर्भाव दिवस पर। परंतु इन्होंने इतनी तपस्या की श्रीमती राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए, और फिर इन्हें जब वरदान मिला तब वृषभानु, वो एक दिन इनके अगले जन्म में सुचंद्र वृषभानु और कलावती कीर्तिदा के रूप में ये प्रकट हुए। तो वृषभानु महाराज वो स्नान के लिए जा रहे थे, बरसाना धाम में रहते थे दोनों, स्नान के लिए जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि सरोवर में एक बहुत ही अद्भुत कमल का पुष्प दिखा। ऐसा कमल का पुष्प किसी ने इस पृथ्वी पर भी नहीं देखा होगा, सारी पृथ्वी पर एकदम नीले रंग का ये कमल का पुष्प, गहरे नीले रंग का कमल का पुष्प जिसकी सहस्त्र पंखुड़ियां, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर और तेजस्वी ये कमल का पुष्प। और इस कमल के पुष्प के मध्य में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल सी, मृदुअंगी छोटी सी बालिका जिसका रंग तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, गौर अंग वाली, जैसे कि तपता हुआ लोहा, इतनी सुंदर ये छोटी सी बालिका दिख रही थी कि वृषभानु महाराज वो सोचने लगे कि शायद इतनी तपस्या मैंने और मेरी पत्नी ने जो की उसका फल शायद मेरे सामने मुझे दिख रहा है। और बताया गया है कि वो कमल का पुष्प कैसा दिख रहा था, गहरा नीले रंग का, श्याम सुंदर की तरह। तो राधा रानी पैदा हुई अपने श्याम सुंदर के साथ, उस कमल के पुष्प के प्रतीक के द्वारा। तो मानो वो नीले कमल का पुष्प श्याम सुंदर कृष्ण, जैसे यहां पर श्याम सुंदर कृष्ण कैसे दिखते हैं, और इनके ऊपर श्रीमती राधा रानी स्वर्णिम वर्ण की छोटी सी बालिका। तो वृषभानु महाराज ने जब श्रीमती राधा रानी को अपने दोनों हाथों में उठाया तो वृषभानु महाराज कांप रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि श्रीमती राधिका वो इतनी कोमल महसूस हो रही थी वृषभानु महाराज को कि उन्हें लग रहा था कि शायद मेरे हाथ सख्त हैं।
तो क्योंकि आसपास केवल वन था तो और कुछ उनके पास था नहीं, कुछ मखमली वस्तु या कुछ वस्त्र उस प्रकार का जिसमें वो श्रीमती राधारानी को रखते, तो उन्होंने सोचा कि पूरा कमल का पुष्प उठाऊं, तो असमंजस में पड़ गए कि कमल का पुष्प उठाऊंगा तो श्रीमती राधारानी को स्पर्श नहीं कर पाऊंगा, और यदि स्पर्श करूंगा तो मेरे हाथ इतने सख्त है शायद चोट पहुंच जाए। तो श्रीमती राधारानी एक सोने की गुड़िया के समान दिख रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूर्य की सारी किरणें, कल्पना कीजिए सूर्य की सारी किरणें यदि कोई छोटे से कमल में समाविष्ट कर दे। हालांकि सूर्य की किरणें बहुत तप्त होती हैं, परंतु ऐसी सूर्य की किरणें जो चंद्र की किरणों के समान शीतल, परंतु दिखने में सुनहरी, या ये हम कहें कि चंद्र की किरणें जो इतनी शीतल, दिखने में सूर्य की किरणों के समान सुनहरे, ये श्रीमती राधा रानी। तो कीर्तिदा और वृषभानु महाराज श्रीमती राधारानी को प्राप्त करने के पश्चात इतना वो प्रसन्नचित हुए, परंतु उसके साथ साथ उन्हें थोड़ा सा शोक हुआ, क्योंकि श्रीमती राधारानी अपने किसी भी इंद्रियों से कुछ कार्य नहीं कर रही थी, आंखें बंद मुंह बंद, यहां तक कि सांस भी वो ले रही थी कि नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वृषभानु महाराज वो बहुत चिंतित हुए, और उस समय वहां पर प्रकट हुए नारद मुनि। नारद मुनि, उन्हें ठीक पता लग जाता है कि भगवान और भगवान की जो शक्ति है वो कहां प्रकट हुए हैं, इसलिए अपनी वीणा बजाते हुए नारद मुनि वहां पर, जैसे ही वृषभानु महाराज ने श्रीमती राधिका को लाए घर पर, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, अपनी वीणा बजाते हुए श्री राधिका रमण नाम का कीर्तन करते हुए नारद मुनि वहां पर पहुंचे, और नारद मुनि जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वृषभानु महाराज देखे, अरे नारद मुनि आज हमारी कुटिया में। तो वृषभानु महाराज तुरंत, उन्होंने ये जो विकट परिस्थिति में वो थे कि हालांकि इतना इतनी सुंदर बालिका श्रीमती राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में उन्हें मिली है, परंतु यहां पर ये अपनी आंखें नहीं खोल रही, इंद्रियों का कोई कार्य नहीं दिख रहा होते हुए उनका, तो नारद मुनि के सामने उन्होंने इस समस्या को रखा। तो नारद मुनि ने कहा, मुझे एकांत में इस समस्या को सुलझाने दो, आप लोग सब बाहर जाइए, क्योंकि नारद मुनि वो 16 उपचार और प्रदक्षिणा श्रीमती राधारानी की, और राधारानी का बर्थडे मनाने वाले थे अकेले, वो जानते थे कि ये राधारानी आंख क्यों नहीं खोल रही, वो जानते थे मुझसे तो नहीं होने वाला, मैं राधारानी की आंख नहीं खोल सकता, कोई नहीं खोल सकता राधारानी की आंख एक व्यक्ति के अलावा, और वो है इनके प्राणेश्वर श्याम सुंदर कृष्ण, केवल वही हैं जो इनकी आंखें खुलवा सकते हैं और कोई नहीं। तो सबको बाहर भेज दिया, और नारद मुनि अब वो सबसे पहले अपना दंडवत दिए छोटी सी श्रीमती राधारानी को,
और फिर जिस पालने में राधा रानी थी पालने का प्रदक्षिणा करने लगे और जोर जोर से कीर्तन करने लगे। तो बाहर कीर्तन सुनाई दे रहा था, हालांकि नारद मुनि तो हर समय कीर्तनीय सदा हरि, परंतु यहां पर कीर्तनीय सदा हरे। अब राधा रानी का कीर्तन उन्होंने चालू किया। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, कई दिन बीत गए, अब तक श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। नारद मुनि वो राधा रानी का आविर्भाव दिवस मनाकर वो वहां से चलते बने, और उन्होंने जाते जाते वृषभानु महाराज को कहा, केवल हिंट दिया कि नंद यशोदा को बुलाना एक दिन। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ है, नंद यशोदा को बुलाना, और नंद यशोदा तो बिना कान्हा के आएंगे नहीं। तो वृषभानु महाराज सोचने लगे कि ये अचानक जाते जाते ये बात क्यों कही। तो ठीक है, वैसे भी वो अच्छे से जानते, बहुत घनिष्ठ मित्र दोनों, वृषभानु और नंद महाराज दोनों। तो नंद महाराज को बुलाने से पहले ही नंद महाराज और यशोदा मई अपने छोटे से लाला कान्हा, राधिका रमण, राधा गोपीनाथ, राधा नाथ, वो वहां पर आए और भगवान श्री कृष्ण इतने आतुर थे कि भागते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया जहां पर श्रीमती राधा रानी पालने में थी, और नंद यशोदा और वृषभानु कीर्तिदा वो आपस में मिल रहे थे। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण एकदम श्रीमती राधा रानी के मुख के सामने खड़े हो गए, और ऐसा नहीं कि श्रीमती राधा रानी को किसी ने कहा कि तुम्हारे श्याम सुंदर आ गए हैं, नहीं, श्रीमती राधा रानी जो रोम रोम में समाई हैं श्री कृष्ण के, और श्री कृष्ण जो कि उनके रोम रोम में समाए हैं, तुरंत केवल भगवान श्री कृष्ण की उस महक को सूंघकर, उनके विग्रह के उस महक को सूंघकर श्रीमती राधा रानी की आंखें खुली। बोलो जय जय श्री राधे। अच्छा, श्रीमती राधा रानी ये दिखा रही थी कि यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है तो हमारी इंद्रियों को केवल उनकी सेवा में नियुक्त करना। जैसे वो भजन कई बार हम सुनते हैं, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, ये आंख यदि श्याम का दर्शन नहीं कर रही तो केवल बटन, केवल बटन है ये, और ऐसी बटन की दबाने से भी कुछ नहीं होने वाला। कई बटन है, दबाने से बेल बजती है या दरवाजा खुलता है, परंतु ये आंखें यदि श्याम का दर्शन नहीं कर रही तो कोई फायदा नहीं इन आंखों का। तो श्रीमती राधा रानी वो अपनी हरेक इंद्रिय से केवल श्याम सुंदर के आनंद के लिए बनी है, बस उनका अस्तित्व है श्याम सुंदर का आनंद, उनकी प्रीति। और उन्होंने अपने प्राकट्य से यह हमें सिखा दिया। इसलिए श्रीमती राधा रानी वो जब छोटी सी थी तब से यशोदा मई बुलाया करती थी श्रीमती राधा रानी को कुकिंग में असिस्टेंस लेने के लिए, सोचिए। और वो भी यशोदा मई ने केवल राधा रानी को क्यों बुलाया, क्योंकि बरसाना से वृंदावन काफी दूरी है और रोज श्रीमती राधा रानी वो जाती बहुत सुंदर व्यंजन भोग पकाने के लिए श्याम सुंदर कृष्ण के लिए। और यशोदा मई ने श्रीमती राधा रानी को इसलिए बुलाया क्योंकि यशोदा मई ने एक कथा सुनी। एक घटना हुई जब श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ थी और दुर्वास मुनि वहां पर आ गए। आप लोग सब दुर्वास मुनि को जानते हैं? दुर्वास मुनि इतने शांत स्वभाव के नहीं है, तो दुर्वास मुनि आ गए और इनके पास, दुर्वास मुनि कई बार भूखे आ जाते हैं तो गोपियां डर गई, दुर्वास मुनि पहुंच गए और हमारे पास कुछ है नहीं इनको अर्पित करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी के पास गए कि हे राधे कुछ कीजिए, दुर्वास मुनि आए हैं। तो राधा रानी देखिए क्या करती हैं, ब्रजरज लेती है, ब्रजरज और जमुना का पानी उसमें डालकर उसका लड्डू बनाती है और वो जाकर गोपियों से कहती है दुर्वास मुनि को खिलाओ। सोचिए मट्टी और जमुना के जल का बना लड्डू किसी को देना और वो भी दुर्वास मुनि को। तो इन्होंने कहा ये क्या, ये शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए बोल रही और वो भी भूखे शेर। और वो भी चिढ़ाने के लिए उस शेर को। तो राधा रानी स्वयं गई और उन्होंने अपने हाथों से दुर्वास मुनि, और सभी गोपियां थर थर कांप रही थी, ये क्या कर रही है, विध्वंस कर देंगे, भस्म कर देंगे ये। परंतु दुर्वास मुनि ने जैसे ही उस लड्डू को खाया, दुर्वास मुनि वो ऐसी समाधि में चले गए कि गोपियां पहले तो चिंतित रह गई कि हुआ क्या, और फिर वो अपनी समाधि से आए तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी का इतना गुणगान किया कहते हुए कि आज तक मैंने इतने भोग पकवान खाए हैं, 56 भोग, 108, 1008, कितने सारे खाए, परंतु ऐसी मधुर वस्तु आज तक मेरी जिह्वा ने स्पर्श नहीं की।
और फिर दुर्वास मुनि ने ये आशीर्वाद श्रीमती राधारानी को दिया कि तुम्हारे हाथ का बना जो कोई व्यक्ति खाएगा वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। बोलो श्रीमती राधारानी की। और ये समाचार फैल गया पूरे ब्रजमंडल में। तो जैसे ये समाचार फैल गया पूरे ब्रजमंडल में तो बहुत बार श्रीमती राधारानी के घर ऐसे ही आ जाते ब्रजवासी और पूछते कीर्तिदा माताजी से कि आज राधारानी ने कुछ बनाया किचन में, कुछ एक थोड़ा सा कण उसका मिल सकता है। और जब माता यशोदा को पता लगा तो माता यशोदा ने तो ये ऑर्डर प्रस्ताव पास करवा दिया कि तुम्हें रोज आना है श्याम सुंदर के लिए बनाने के लिए। और श्रीमती राधारानी ने वो लड्डू दुर्वास मुनि को इसलिए खिलाया ताकि दुर्वास मुनि ये आशीर्वाद दें, ताकि वो आशीर्वाद माता यशोदा सुने और माता यशोदा श्रीमती राधारानी को रोज बुलाए ताकि श्रीमती राधारानी रोज अपने श्याम सुंदर के लिए भोग बना सके। बोलो श्री श्री राधे श्याम। तो रोज श्रीमती राधारानी और श्रीमती राधारानी के विषय, उनके कुकिंग के विषय में बताया गया है। थोड़ा ध्यान से सुनिए उनके उनका कुकिंग का एक्सपर्टीज, दक्षता। श्रीमती राधारानी ने भगवान श्री कृष्ण को एक भी ऐसा व्यंजन दोबारा नहीं खिलाया है आज तक, कोई भी आइटम रिपीट नहीं हुआ है। जैसे कई बार हम भी जब बनाते हैं तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। यदि हम रोज हलवा बनाएं तो हर बार नया हलवा बनता है, कभी शक्कर कम, कभी घी ज्यादा, कभी सूजी कम, कभी बिल्कुल सूजी नहीं, केवल घी शक्कर। जैसे एक वर्ष राधा गोपीनाथ मंदिर में हम राधाष्टमी के महोत्सव पर हमने सोचा कि क्योंकि राधा रानी का कुकिंग डिपार्टमेंट है तो हम भी कुछ दिखाते हैं राधा रानी को। तो हमने सोचा कि 1008 ऑफरिंग्स तैयार करेंगे। तो 1008 ऑफरिंग किस प्रकार से तैयार हुई अंततः, कि पोहा कोथमीर के साथ, पोहा बिना कोथमीर के, पोहा नारियल के साथ, पोहा बिना नारियल के। कितने हो गए? 4। ये हमारी स्थिति है। परंतु श्रीमती राधारानी उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग नहीं बनाया करती थी। यहां तक कि श्रीमती राधा भगवान श्री कृष्ण वो चख लेते थे श्रीमती राधारानी का प्रेम। रोज जब वो खाते तो चख लेते थे कि श्रीमती राधारानी ने पकाया है, ये श्रीमती राधारानी ने बनाया, ये माता यशोदा ने बनाया। उन्हें अंतर समझ में आ जाता दोनों का। तो सभी ग्वाल बाल भी वो उन्हें इतना नहीं मिलता, श्रीमती राधारानी का पकाया हुआ भोग नहीं इतना मिलता, केवल भगवान श्री कृष्ण उन्हें सबसे ज्यादा मिलता। तो जब भगवान इन सब असुरों का वध कर रहे थे, बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, तो मधुमंगल मधुमंगल को पता था कि ये कृष्ण अकेले अकेले श्रीमती राधा रानी का पका हुआ भोग खाता रहता है, मुझे कभी बुलाता नहीं। तो मधुमंगल ने भगवान से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मारते हो इन राक्षसों को? ये जो तुम रोज राधिका के बने हाथ का भोजन खाते हो ना, उसमें से शक्ति मिल रही तुम्हें? ये राधा रानी की शक्ति है तो सारा मेडल सर्टिफिकेट राधा रानी को मिलना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं कि तुम इन असुरों का वध कर पा रहे हो। तो भगवान सोचने लगे कि बड़ा इंसल्ट कर रहा है ये दिन दहाड़े। तो जाकर माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया कहो, ये जो रोज तुम मुझे इतना खिलाती हो, ये राधिका आके बनाती है तुम्हारे साथ? यशोदा मैया ने कहा, वही सब कुछ बनाती है, मुझे तो बाकी सब कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है। और कैसे बनाती हो? अच्छा बनाती है। रेटिंग क्या है तुम्हारा? तो यशोदा मैया ने कहा, अरे बहुत, उसके तरह कोई नहीं बना सकता। तो भगवान पूछना चाहते थे कि क्या उसके बनाने में इतनी शक्ति है कि मैं इन असुरों का वध कर रहा हूं? और वो भी पूछ रहे हैं माता यशोदा से। माता यशोदा तो पहले विश्वास नहीं करती थी कि कृष्ण मारता है सबको। तो जब माता यशोदा से पूछा कि मैं इन सब असुरों का जाकर रोज वध करता हूं, और ये मधुमंगल कहता है कि राधा रानी के खाए हुए भोग के वजह से हो रहा है, तो माता यशोदा ने कहा, हाँ ठीक है, सही बात है, सही कहा, ब्राह्मण है मधुमंगल, वो थोड़ी झूठ बोलेगा, नहीं तो तुम्हारे में ये कहां से इतनी शक्ति आएगी? और श्रीमती राधा रानी वो कोने से देख रही थी, सुन रही थी, रसोई घर के चौखट पर। और भगवान श्री कृष्ण अपने आंखों के कोने से श्रीमती राधा रानी को देख रहे, और श्रीमती राधा रानी मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण को इशारा कर रही है कि अब जान गए असलियत क्या है। हालांकि श्रीमती राधा रानी के सामने भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं चलती। जैसे भगवान श्री कृष्ण को हरि कहा गया है, हरि का अर्थ क्या है? जो सबके मन को हर लेते हैं। परंतु वो जब श्रीमती राधा रानी के सामने आते हैं तो श्रीमती राधा रानी उन हरि को हर लेती हैं। तो वो है हरि, परंतु श्रीमती राधा रानी के प्रेम के द्वारा उनका हरण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण वो परम नियंता हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी के सामने जब श्रीमती राधा रानी गुस्सा होती हैं, श्रीमती राधा रानी की मान लीला बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि एक कथा है कि जब श्रीमती राधा रानी वो भगवान श्री कृष्ण एकांत में वो लोग बैठे थे, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो राधे। राधा रानी बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत मधुर कंठ है श्रीमती राधा रानी का। तो राधा रानी ने कहा कि अच्छा, तुम्हें लगता है मैं बहुत सुंदर गाती हूं? तो कृष्ण ने कहा, बहुत लोग गुणगान किए, मैं कभी सुना नहीं तुम्हें गाते हुए, गा के सुनाओ थोड़ा। तो श्रीमती राधा रानी वो थोड़ा गाकर सुनाई, और श्रीमती राधा रानी गाती क्या है,
कृष्ण कीर्तन। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, मुझे गाना नहीं आता, मुझे सिखाओगे? अब जो सातों सुरों के स्रोत हैं वो यहां पर खिलवाड़ कर रहे हैं, कहते हैं मुझे उनको गाना नहीं आता। तो श्रीमती राधा रानी अब सीरियसली गंभीरता से इस बात को ले रही कि ठीक है, तुम्हें सीखना है तो मैं सिखाऊंगी। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं ठीक है, जैसे मैं शुरू करती हूं गाना वैसे गाने का प्रयास करो। तो भगवान श्री श्याम सुंदर, राधा रानी एक पद गाती हैं और श्याम सुंदर बिल्कुल गलत, उसे बिल्कुल गलत गाते, कोई सुर नहीं कोई ताल नहीं। तो श्रीमती राधा रानी फिर समझाती है कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी गाते हैं, ये क्या गायों की तरह मुंह मुंह कर रहे हो तुम? तो भगवान कहते हैं अब गायों के साथ रहता हूं तो वैसी आवाज आएगी। तो फिर से श्रीमती राधा रानी उस पद को गाती हैं, फिर से गलत छलत भगवान गाना शुरू करते हैं। तो बहुत बार हो जाता है राधा रानी इतना सिखाने का प्रयास कर रही है और जानबूझकर भगवान उसे गलत गा रहे। और फिर भगवान गाते गलत गाते हुए जो राधा रानी ने जो पद गाया नहीं, जो राधा रानी जिस सुर ताल पर आज तक नहीं गा सकी, उस सुर ताल पर भगवान श्री श्याम सुंदर गाना शुरू किए और राधा रानी जब सुन के देखने लगी तो राधा रानी आश्चर्यचकित हो गई और उसके साथ साथ इतना गुस्सा आया कि फिर ये सब नाटक क्यों। और फिर श्रीमती राधा रानी वो मान लीला में चली गई। अब जब श्रीमती राधा रानी मान लीला में चली जाती हैं तो जो श्याम सुंदर परम नियंता हैं वो हिल जाते हैं। अरे साधारण से लोग हिल जाते हैं अपनी पत्नियों के सामने। तो भगवान अब क्षमा याचना मांगते हुए श्रीमती राधा रानी के समक्ष, और मान मंदिर है बरसाना में जहां पर श्रीमती राधा रानी का ये रूप जिसमें श्रीमती राधा रानी मान लीला कर रही है, ये रूप वहां पर श्रीमती राधा रानी का प्रकट है। मंदिर बना है मान मंदिर जहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों पर अपना मस्तक रखे हैं। यह है श्रीमती राधा रानी के भक्ति का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, गीता में स्वयं वो कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहे कि सब कुछ सर्वज्ञ भगवान है, परंतु वही सर्वज्ञ भगवान नहीं जान सकते कि श्रीमती राधा रानी के अंदर ऐसा कितना प्रेम मेरे प्रति है जो श्रीमती राधा रानी इतना आस्वादन ले रही है मेरे प्रेम में, जो मैं नहीं ले रहा श्रीमती राधा रानी के प्रेम में। इसलिए एक उदाहरण दिया गया है कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसा है, जो भगवान श्री कृष्ण आस्वादन नहीं कर पा रहे। एक उदाहरण दिया है कि एक बर्फीला पर्वत, बर्फ का पर्वत हिमालय, हिमालय का अर्थ होता है हिम का आलय, बर्फ का आलय। तो बर्फ का पर्वत और उस बर्फ के पर्वत के निकट
वो बर्फ पिघलती हुई नदी के रूप में बह रही है। तो ये बर्फ का पर्वत नदी से पूछता है कि मुझे प्यास लगी है। तो बर्फ का पर्वत वो अपने आप की प्यास कैसे बुझाएगा? वो तो जमा हुआ है, हालांकि है क्या? है जल, परंतु जमा हुआ जल बर्फ के रूप में। तो वो नदी इस हिम आलय से कहती है कि तुम्हें पिघलना होगा। जब तुम पिघलोगे तब जाकर तुम एक नदी बनोगे, और जब तुम नदी बनोगे तब जाकर तुम उस जल में परिणित होगे जो प्यास बुझा सकेगा। उदाहरण दिया गया है कि यदि भगवान श्री कृष्ण रसखान हैं, यदि हम एक उदाहरण जो हम समझ सके, रसगुल्ला, यदि भगवान श्री कृष्ण रसगुल्ले के समान है, तो श्रीमती राधा रानी उस जिह्वा के समान है जो उस रसगुल्ले का आस्वादन करती है। तो यदि रसगुल्ला पूछे जिह्वा से कि मैं कैसे अपने आप को पहचानूं, तो जिह्वा कहती है तुम्हें अपने रसगुल्ले के पद को छोड़कर जिह्वा के पद को धारण करना होगा। कान्हा रे तू राधा बन जा, भूल पुरुष का मान, कब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान। कि इसमें भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कि तू हे भगवान अपने पुरुष का अभिमान छोड़ो और श्रीमती राधा रानी के भाव में आओ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा भाव द्युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इसलिए हालांकि वो सर्वज्ञ है, परंतु जान नहीं पाते कि श्रीमती राधा रानी ऐसा कौन सा आस्वादन ले रही है मेरे प्रेम में जो मैं नहीं ले पा रहा। भगवान श्री कृष्ण है सभी के नाथ, परंतु उनका एक नाम है राधानाथ। राधानाथ का अर्थ ये नहीं कि वो जो राधा के नाथ हैं। राधानाथ का अर्थ यदि ब्रजवासियों से पूछो तो वो कहते हैं राधा रानी जो श्री कृष्ण की नाथ हैं। भगवान श्री कृष्ण जो इतने मनमोहक हैं, इतने सुंदर, अति सुंदर जो भगवान हैं, जिनको एक नाम मिला है मदन मोहन, इस पूरे सृष्टि में सभी मोहित हैं मदन से, कामदेव से, और कामदेव मूर्तिमान मोहित हैं मोहन से, और वो मदन मोहन मोहित हैं मदन मोहन मोहिनी से। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए यदि हमें भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है तो भगवान श्री कृष्ण के जितने सारे उनके भगवान होने के गुण हैं वो श्रीमती राधा रानी के सामने सभी निष्फल हो रहे हैं। इसलिए एक सुंदर पद में गाया गया है, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए, आराधन के आगे आगे कान्हा भागे आए, ओह कान्हा भागे आए, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, आराधन के आगे आगे कान्हा भाग्य आए। ये हैं श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी हालांकि बहुत सी लीलाएं हैं इनकी भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में, परंतु आज के दिन हम श्रीमती राधा रानी की जो शरणागति है इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे, क्योंकि हमें श्रीमती राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी आराधना सुधारनी है, और हमारी आराधना सुधारने के लिए हमें सीखना है कि उनके शरणागत कैसे होना है। भगवान ने अर्जुन को जो गीता में ज्ञान दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, श्रीमती राधा रानी ने उस शरणागति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्त स एव नापरः। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में जो अंतिम शिक्षा है, ये पद श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में कह रहे हैं। ये श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण के समक्ष। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम केवल मुझे ये कह दो कि कौन सी गोपी तुम्हें प्रसन्नता देती है, मैं उस गोपी की सेवा करने के लिए तैयार हूं, मैं उस गोपी को सजाने संवारने के लिए तैयार हूं और तुम्हारे सामने लाने के लिए तैयार हूं जो गोपी तुम्हें प्रसन्नता देती है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, श्रीमती राधा रानी प्रार्थना कर रही हैं श्याम सुंदर के चरणों पर कि मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़ रही हूं, यदि आपको मुझे आलिंगन करना है वो आप पर निर्भर है, यदि आपको मुझे अपने चरणों से ठुकरा कर फेंक देना है कहीं पर वो भी मुझे स्वीकार है, यदि आप मुझे दुर्लक्ष कर कर मर्महत करते हैं वो भी मुझे स्वीकार, जो भी आप करो हे लंपट आप मेरे प्राणेश्वर देव नित्य रूप से बने रहोगे और कोई उस जगह को नहीं ले सकता। श्रीमती राधा रानी की शरणागति के विषय में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा द्वारका गए तो द्वारका में सत्यभामा और रुक्मिणी वो चर्चा कर रही थी, तो रुक्मिणी देवी सत्यभामा से कहती हैं कि मुझे जानना है कि ये राधे कौन है। तो सत्यभामा ने पूछा क्यों, रुक्मिणी कहती हैं कि ये रोज रात को हमारे कृष्ण रोज रात को इनकी हर एक सांस से राधे 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 राधे, पूरे रात भर हर एक सांस से केवल राधे 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 निकल रहा था। कौन है ये राधा? सत्यभामा कहती हैं कि अरे पूरी रात नहीं, दिन भर और रात भर इनके सांसों से, इनके मुख से केवल राधा का नाम निकलता है। और एक दिन तो मुझे एकांत में कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा तुम जानती हो मैंने क्यों तुमसे विवाह किया? तो सत्यभामा एकदम, और सत्यभामा बहुत प्रसिद्ध है झगड़ा करने में, तो सोचिए सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं एकांत में, सत्य हे भामिनी आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने तुमसे विवाह क्यों किया। तो सत्यभामा थोड़ी और निकट बैठ गई। हाँ बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहे क्योंकि तुम्हें जब भी मैं देखता हूं राधा रानी की याद आती है। लो कर लो बात। तो सत्यभामा रोते हुए रुक्मिणी से कहती हैं कि हम दोनों जो कि पटरानियां हैं इन कृष्ण द्वारकाधीश की, हम दोनों उस श्री राधिका के नाखूनों के कोनों तक की भी पदवी नहीं ले सकते कि कृष्ण को कितना प्रेम है श्रीमती राधा रानी से। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा वृंदावन, क्योंकि उद्धव थोड़ा भगवान की तरह दिखते, और दूर से जब ब्रजवासियों ने उद्धव जी को आते हुए देखा भगवान के रथ पर, और भगवान ने अपना ही पीतांबर और अपने वस्त्र दिए, अपनी माला दी उद्धव जी को, तो दूर से कई ब्रजवासी वो धोखा खा गए कि अरे कृष्ण आ गए। परंतु गोपियां धोखा नहीं खाई, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी, जब श्रीमती राधा रानी को लाकर यह समाचार दिया गया कि कृष्ण आ गए, श्रीमती राधा रानी कहा नहीं, भगवान कृष्ण आ गए और मुझे कोई समाचार इसका दे रहा है, अर्थात नहीं आए वो, क्योंकि वो आते ही मुझे किसी के समाचार की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। ये उनका प्रेम देखिए। तो उद्धव जी जो कि वेदों में पारंगत बड़े विद्वान, स्वयं बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, वो अब ब्रजवासियों को वेदों के आधार पर समझा रहे हैं कि विलाप मत करो। उद्धव जी के विषय में बताया गया कि जब उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि जमुना के साथ साथ एक और नदी बह रही है, और उन्होंने सुना था कि ब्रजमंडल में एक ही है जमुना, ये दूसरी नदी कहां से आई? ये सभी ब्रजवासियों के आंसुओं की नदी थी, और इस एक नदी में एक विशेष नदी, वो केवल श्रीमती राधा रानी के आंसुओं की नदी थी। तो उद्धव ब्रजवासियों से मिलते हैं, और अंततः भगवान विशेष उद्धव जी को भेजे थे कि श्रीमती राधा रानी का समाचार लेकर आना। अब ध्यान से सुनिए, उद्धव जी श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं तो क्या वार्तालाप होता है। तो उद्धव जी समझा रहे हैं राधा रानी की दशा को देखते हुए, राधा रानी अपनी दशा बताती है कि मेरी दशा ऐसी है कि मानो किसी पशु को किसी जलते हुए कक्ष में किसी ने बंद कर दिया। तो
तो मेरी जो आत्मा है मेरे शरीर के अंदर उस पशु के समान है जो कि किसी जलते हुए कक्ष में फंस गया है, परंतु वो पशु या तो अपने आप को उसमें मार दे या उस कक्ष से बाहर निकल जाए, परंतु मैं मेरी दशा ऐसी है हे उद्धव कि न तो मैं अपने आप को इस जलते हुए शरीर में मार सकती हूं, क्योंकि उनको इतनी ठोस ठेस पहुंचेगी यदि मैं ऐसा करूंगी तो, और मैं इस कक्ष से बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि उन्होंने बाहर से कड़ी लगा दी है, और वो कड़ी कौन सी लगाई है, उनका आश्वासन कि वो आएंगे एक दिन, उनका जो आश्वासन है उसकी कड़ी बाहर से लगा दी है, तो मैं इस जलते हुए कक्ष से बाहर भी नहीं निकल सकती और जल भी नहीं सकती। तो उद्धव श्रीपति राधारण्य की इस दशा को देखते हुए कहते हैं तो भूल जाओ उस कृष्ण को, क्यों उसको याद करती हो जो कि वहां पर 16,108 पटरानियों के साथ है, क्या लेना देना ऐसे व्यक्ति के साथ, क्यों रिश्ता अब तक बनाए रखी हो। तो जब श्रीमती राधारानी ऐसे वाक्य सुनती है उद्धव के मुख से, श्रीमती राधारानी बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं हे उद्धव क्या तुमने कभी किसी हिरण को देखा है, कभी देखा है कि हिरण को शिकारी कैसे मारता है, हिरण को शिकारी सुंदर मुरली बजाकर फिर तीर से मारता है, तो वो हिरण जो जानता है कि ये शिकारी मुरली क्यों बजा रहा है, वो उस मुरली के धुन से इतना आसक्त रहता है वो हिरण कि वो हिरण अपने प्राण त्याग देता है और उस शिकारी को मरते मरते कहता है कि ये जो मेरा चाम है मेरी जो चमड़ी है इसे तुम और वाद्य बनाने में लगाओ, क्योंकि हिरण का प्रेम ध्वनि से या संगीत से इतना रहता है। तो ये हिरण जो जानते हुए भी कि उसे मारा जा रहा है, वो स्वयं मारा जा रहा है उस संगीत के वजह से, वो फिर भी उस संगीत को छोड़ता नहीं सुनना। राधा रानी उद्धव से पूछती हैं तुमने चकोर को देखा है, एक पक्षी होता है चकोर जो कि चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है। राधा रानी कहती हैं कि ये चकोर पक्षी चंद्रमा से इतना प्रेम करता है कि पूर्ण चंद्र की प्रतीक्षा में वो अपनी गर्दन ऊपर किए हुए कई बार उसकी गर्दन टूट जाती है, क्योंकि कई बार अमावस्या की रात होती है और चकोरों की गर्दन टूट जाती है, परंतु अन्य चकोर वो बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर लांछन नहीं लगाते कि इतने निर्दयी तुम कैसे हो सकते हो कि कोई मरा जा रहा है तुम्हारे लिए और तुम आते ही नहीं। तो जिस चंद्र के वजह से वो चकोर मरता है वो फिर भी चकोर उस चंद्र को नहीं छोड़ता। श्रीमती राधारानी कहती हैं क्या तुमने किसी पतंगे को देखा है, जब वो जलती हुई लौ में प्रवेश करता है, इतना प्रेम करता है उस जलती हुई लौ से, वो जानता है और अन्य पतंगे भी जानते हैं कि वो जलकर भस्म हो जाएगा, परंतु फिर भी उस अग्नि से इतना प्रेम करता है वो पतंगा कि वो अपने आप को जला देता है उस अग्नि के प्रेम में। और अंतिम नहीं अंतिम उदाहरण नहीं दो और उदाहरण देती हैं, चातक पक्षी का उदाहरण श्रीमती राधारानी देती हैं कि चातक पक्षी प्रतीक्षा में रहता है स्वाति नक्षत्र के उस बादल के, वर्षा के पानी के बूंद के, और कई बार वो बादल वर्षा की जगह वज्र, बिजली, बिजली का प्रहार उस चातक के ऊपर वो बादल करता है और वो चातक मर जाता है, परंतु फिर भी वो कभी अपना प्रेम उस बादल के प्रति कम नहीं रखता। और अंतिम बहुत ही सुंदर उदाहरण श्रीमती राधारानी उद्धव से कहती हैं। वो कहती हैं कि जब मछुआरा मछली पकड़ने जाता है समुद्र में, तो मछली कैसे पकड़ता है? जाल फेंकता है, और उस जाल में मछली जल के साथ रहती है पहले। जब तक उस जाल को वो मछुआरा बाहर नहीं निकालता, तब तक उस जाल में जल भी रहता है, मछली भी रहती है। परंतु जैसे ही मछुआरा जाल बाहर निकालता है, खींचता है, होता क्या है, वो जल मछली का संग छोड़ देता है, उस मछली को अकेले छोड़ देता है उस जाल में तड़पने के लिए। श्रीमती राधारानी कहती हैं कि वो मछली जो जीवन भर अपना संग उस जल को दी है, उस विकट परिस्थिति में वो जल उस मछली को छोड़ देता है, परंतु फिर भी वो मछली उस जाल में तड़पती रहती है। किसके लिए? उसी जल के लिए, जिस जल ने धोखा दिया, जिस जल ने उस मछली को धोखा दिया। वो जल जाल से बाहर निकल गया और मछली तड़पते हुए उसी जल में फिर से जाने के लिए तड़प रही है। श्रीमती राधारानी कहती हैं कि यदि एक पतंगा इतना प्रेम कर सकता है अग्नि से, यदि एक चकोर इतना प्रेम कर सकता है चंद्र से, यदि एक चातक इतना प्रेम कर सकता है बादल से, यदि एक हिरण इतना प्रेम कर सकता है संगीत से, यदि एक मछली इतना प्रेम कर सकती है उस जल से जो कि उसे धोखा देकर छोड़कर चला जाता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बोलने पर मैं श्याम सुंदर को छोड़ दूंगी? जाओ और अपना यह भाषण किसी और को सुनाना। अरे जब ये तुच्छ प्राणी, ये जिनसे प्रेम करते हैं भौतिक तत्वों से, इनको नहीं छोड़ सकते, तो मैं अपने आराध्य देव प्राणेश्वर श्याम सुंदर को कैसे छोड़ सकती? और जब उद्धव जी ने यह सुना श्रीमती राधारानी के मुख से, तो उद्धव जी बेवाक, कुछ नहीं कह पाए, और ऐसे ही वो स्तब्ध भगवान श्री कृष्ण के सामने गए और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ, तुम मिले, क्या तुम मेरी श्री राधा से मिले? उद्धव जी कुछ नहीं कह पाए, केवल इतना कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की वृंदावन छोड़कर। श्रीमती राधारानी को सोचते हुए रोज भगवान श्री कृष्ण रोया करते थे, परंतु अब जब उद्धव के मुख से सुना तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से पूछने लगे, अब तुमने समझा कि मैं किस दशा में जी रहा हूं? हर क्षण ब्रजवासियों के विरह में, और विशेष रूप से श्रीमती राधारानी के विरह में। इसलिए श्रीमती राधारानी ने जो अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है भगवान श्री कृष्ण को, रूप गोस्वामी ने अपने एक पद में बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमती राधारानी की शरणागति, जो कि सभी सीमाओं को पार कर दी है, उसे बताया है। और आज के इस राधाष्टमी
के प्रवचन को हम रूप गोस्वामी के इसी सुंदर प्रार्थना से संपन्न करेंगे। रूप गोस्वामी वो ये श्लोक कहे हैं जिसमें श्रीमती राधारानी प्रार्थना कर रही हैं। ये श्रीमती राधारानी का मनोभाव है जिसमें श्रीमती राधारानी अपने आप को उस स्थिति में रख रही हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, परंतु श्रीमती राधारानी वो ऐसा सोच रही हैं और रूप गोस्वामी श्रीमती राधारानी का मनोभाव हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रार्थना में श्रीमती राधारानी वो श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं कि हे श्याम सुंदर, पता नहीं मैं कितना जीऊंगी, पता नहीं कितनी सांसें मेरी बाकी हैं, परंतु मैं ये एक प्रार्थना तुम्हारे समक्ष रख रही हूं। पंचत्वं तनु एति भूत निवह स्वाम शेर मिलन्तु ध्रुवम धातारम प्रणिपत्य हंत सिरसा तत्ताल वृंते नीलम। श्रीमती राधारानी कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जब मेरा शरीर अंत हो जाए तो मेरा जो शरीर इन पांच तत्वों से बना हुआ है, हालांकि उनका शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद है, परंतु श्रीमती राधारानी की नम्रता है कि वो अपने आप को पांच तत्वों से बना हुआ कह रही हैं। श्रीमती राधारानी कहती हैं कि जो मेरा शरीर पांच तत्वों से बना है, मेरी यही प्रार्थना है श्याम सुंदर कि मेरे जीते जी तो मेरे सारे पांच तत्व आपकी सेवा में हैं, परंतु मेरे मरने के बाद भी मेरा हर एक तत्व हे श्याम सुंदर आपकी सेवा में लगा रहे। और श्रीमती राधारानी कहती हैं कि जो मेरा पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व उस पृथ्वी के तत्व में चला जाए जिस पृथ्वी पर आप अपने चरणों को रखो, ताकि मेरा पृथ्वी तत्व मरने के बाद भी आपके चरणों की सेवा में रहे। जो मेरे शरीर के अंदर जल तत्व है, वो जल तत्व है श्याम सुंदर उस सरोवर में मिल जाए जाकर जिस सरोवर में आप विहार करोगे, जल क्रीड़ा करोगे। श्रीमती राधारानी कहती हैं कि मेरे शरीर का जो अग्नि तत्व है वो उस अग्नि में प्रविष्ट हो जाए जिस अग्नि के सहारे आप अपने आप को सजाते हो आईने में देखकर। मेरे अंदर का जो वायु तत्व है वो वायु तत्व उस वायु में प्रविष्ट हो जाए जब आपके भक्त आपको पंखा ढुलाते हैं और उसमें से जो वायु निकलती है, तो मेरे शरीर का वायु तत्व उस वायु में प्रवेश कर जाए और आपकी सेवा में लगा रहे। और मेरे शरीर का जो आकाश तत्व है खम, ये उस आकाश में जाकर मिल जाए जिस आकाश के नीचे आपकी लीलाएं हो रही हैं। तो मेरा पृथ्वी, मेरा जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व, इन सभी तत्वों में मिल जाए जिनमें आपकी लीलाएं हो रही, आपकी सेवा जहां पर हो रही। इसलिए वो कहती हैं पंचत्वम तनु एति भूत निवह स्वाम शेर, हर एक मेरा स्व अंश मिलन्तु ध्रुवम, मिल जाए इन सब में। धाताराम प्रणिपत्य हंत सिरसा, विधाता ब्रह्मा जी से मेरी यही प्रार्थना है। ये है श्रीमती राधारानी की शरणागति, कि इस शरणागत भाव से श्रीमती राधारानी वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत होना चाहती है। तो आज के इस बहुत ही पावन अवसर पर हमें
श्रीमती राधारानी से यही प्रार्थना हम कर सकते हैं, हमारे पास न तो काबिलियत है, न तो योग्यता है, न कोई शब्द, टूटी फूटी हमारी भाषा में हम केवल श्रीमती राधारानी के समक्ष यही कह सकते हैं कि यदि हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवा में कहीं एक सेवक के रूप में हमें स्वीकार करें। और यही श्रीमती राधारानी, उनका मूल उद्देश्य यही है कि वो हम सबको भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, जैसे कि वो भोग लाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने रखती हैं, वैसे श्रीमती राधारानी वो हम सबको रखना चाहती हैं। और इसलिए श्रीमती राधारानी वो इस रूप में हरे कृष्ण महामंत्र में श्रीमती राधारानी सबसे पहले प्रकट हुई हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलयुग में यदि हमें श्रीमती राधारानी की आराधना में, और वो जिन आराधना भगवान श्री कृष्ण की कर रही हैं, उस तीव्रता से लगना है, तो हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेना है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में स्वयं कृष्ण श्रीमती राधारानी के भाव को लेकर इस महामंत्र को देने आए हैं, जो कि श्रीमती राधारानी का महाभाव है। बोलो श्रीमती राधारानी आविर्भाव महामहोत्सव की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, हरे कृष्ण महामंत्र की, बोलो शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी। श्रीमती राधारानी की इच्छा है कि हम केवल महामंत्र गाएं आज। हम एक दूसरा भजन गाने के लिए तैयारियां किए थे, परंतु हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में केवल उनकी कृपा यदि है तो वही हम धारण कर सकते हैं।
Thank you. अमित देसाई प्रभु